बनाया प्रभु ने अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना।
बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना।
ओम शांति। मनुष्य जीवन में दो बातें महत्वपूर्ण है, एक है कर्म और दूसरा है धर्म। कर्म के बारे में आपने समझ लिया है कि आत्मा शरीर धारण करने के बाद इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर आने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर नहीं रह सकती है। कर्म हमें करने ही हैं, क्योंकि आत्मा चैतन्य है और जैसे ही फिजिकल ऑर्गन्स प्राप्त होते हैं तो वो एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए कर्म का संपूर्ण त्याग कोई भी नहीं कर सकता है। व्यक्ति अपने पारिवारिक सामाजिक जिम्मेवारियों को छोड़कर ग्रह त्याग करते हैं, जंगल में चले जाते हैं और वे कहते हैं कि हमने कर्म संन्यास लिया है, लेकिन वास्तव में जंगल में जाना, वहां जाकर भी जीवन जीना, श्वास लेना, सोचना, साधना करना, ये भी तो कर्म है ना। इसलिए कर्म का संपूर्ण त्याग कोई भी नहीं कर सकता। तो जब कर्म हमें करने ही हैं, आत्मा का कार्य ही है कर्म करना, तो अब हमें यही सोचना है कि हम अपने हर कर्म को श्रेष्ठ कैसे बनाएं। और उसके लिए आवश्यक है धर्म के बारे में जानना। जैसे कर्म को नहीं छोड़ सकते, धर्म को भी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि धर्म की धारणा के बिगर कर्म को भी हम श्रेष्ठ नहीं बना सकते। इसलिए कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए सत्कर्म की सत्य परिभाषा समझने के लिए धर्म का सही ज्ञान होना भी जरूरी है। इसलिए आज अगर हम अपने जीवन में धर्म और कर्म की स्थिति को देखें तो कईयों ने धर्म को ही कर्म बना दिया है और कई कर्म को ही धर्म समझ बैठे। कई सोचते हैं कि वर्क इज वर्शिप, अपना कर्तव्य करना, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो हमारी फर्ज है, वो फर्ज अदा करना, वो ही कर्म है। वो कहते हैं कर्म ही पूजा है। बेशक अपनी फर्ज अदा करना, कर्तव्य पालन करना बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन धर्म हमें ऐसी अनेकानेक सद्गुणों का ज्ञान देता है, उन गुणों की जीवन में धारणा कराता है। इसलिए धर्म की धारणा के बिगैर हम कर्म को भी श्रेष्ठ नहीं बना सकते। इस प्रकार दूसरी और कई लोग हैं जिन्होंने धर्म को ही कर्म समझ लिया, अर्थात धर्म ही उसके जीवन निर्वाह का, पेट पोषण का साधन उन्होंने बना दिया। कथा कीर्तन कराना, पूजा पाठ कराना, भजन कीर्तन कराना, वही उनके जीवन निर्वाह का साधन बन गया। उन्होंने धर्म को ही धंधा बना दिया है। वास्तव में आवश्यक है कर्म में धर्म के समन्वय की। आज धर्म माना हम समझते हैं कि हम जो कुछ मानते हैं, पूजा पाठ कर लेना, भजन कीर्तन कर लेना, कथा श्रवण कर लेना, देव दर्शन कर लेना, शास्त्र पठन कर लेना, वो ही धर्म है। और इस प्रकार एक दो घंटे का धर्म हम रोज कर लेते हैं और हमारी भावना संतुष्ट हो जाती है कि हमने अपना धर्म कर लिया। लेकिन दो घंटे का धर्म करके बाकी के 22 घंटे हमें ये स्मृति भी नहीं रहती है कि धर्म हमें क्या सिखाता है। और इस प्रकार दो घंटे का धर्म करके बाकी के 22 घंटे जैसे अधर्म करने की एक परमिट हम मंदिर से प्राप्त कर लेते हैं। आज धर्म का कर्म पर कोई प्रभाव नहीं रहा है। धर्म अलग हो गया है, कर्म अलग हो गया है। कर्म माना हम समझते हैं कि देह और देह के संबंध, दुनियादारी, उनकी प्रवृत्ति, वो है कर्म। और धर्म माना आश्रम है, मंदिर है, गुरु शिष्य है, कथा कीर्तन हो रहे हैं, तो हम समझते हैं कि वो धर्म है। तो कर्म अलग हो गया है, धर्म अलग हो गया है। भल कहते हैं गृहस्थाश्रम, पर आज का गृहस्थ में आश्रम जैसी पवित्रता और शांति नहीं रही। इसलिए धर्म की इस प्रकार की स्थिति को देखकर आज का युवा वर्ग या शिक्षित वर्ग ये सोचता है कि जो लोग धर्म रोज करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, शास्त्र पठन करते हैं, वे घर आकर रोज गुस्सा भी करते हैं, तेरी मेरी भी करते हैं, हेराफेरी भी करते हैं, तो कर्म में तो कोई सुधार आ नहीं रहा है। इसलिए वे सोचते हैं कि रोज भगवान को याद करना, उसके सामने कहना विषय विकार मिटाओ, और फिर रोज घर आकर विकारों के वश गलत कर्म करना, इससे तो वे सोच लेते हैं कि छोड़ो धर्म को, खाओ पियो और मौज करो। तो आज संसार में धर्म और कर्म की ये स्थिति है, इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि वास्तव में धर्म क्या है और कैसे हम उनका कर्म में समन्वय कर सकते हैं। तो आज के लेसन में हम धर्म के इतिहास पर देखेंगे कि वास्तव में असली धर्म कौन सा है, एक सत धर्म कौन सा है, अनेक धर्म कैसे हुए, वो धर्म अधर्म कैसे बन रहे हैं और पुनः अनेक अधर्मों का विनाश होकर एक सत धर्म की स्थापना कैसे होती है। क्योंकि शास्त्रोक्त मान्यता के अनुसार हमारी बुद्धि में यही है कि संसार के अनादि काल से धर्म और अधर्म के झगड़े चलते ही रहते हैं, आसुरी और दैवी वृत्ति के युद्ध चलते ही रहे। जब कृष्ण थे तो कंस जरासंध जैसे असुर दानव भी थे, जब राम थे तो रावण भी थे। तो लोग सोचते हैं कि संसार के अनादि काल से ही, सतयुग त्रेता के काल से ही धर्म अधर्म के झगड़े चलते ही रहे हैं। इसलिए धर्म के नाम पर पूर्ण विजय की कभी कोई स्थिति रही है या नहीं, वो हमारी बुद्धि में स्पष्ट ही नहीं। विकारों पर संपूर्ण विजय कभी प्राप्त हुआ था या नहीं, ये हमारी बुद्धि में स्पष्ट ही नहीं। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि देवताएं भी ऐसे ही थे, शंकर को भी गुस्सा आता था, उसने भी क्रोध किया, वो भी भिलनी के पीछे भागे, ब्रह्मा भी सरस्वती पर मोहित हो गए, कृष्ण को भी 16108 रानियां थी। इस प्रकार की शास्त्रोक्त बातें सुनकर लोग ये सोच लेते हैं कि धर्म का पूर्ण विजय या मानव जीवन में विकारों पर पूर्ण विजय कभी हो ही नहीं सकता, ये सब साथ साथ ही चलता है। लेकिन परमात्मा ने आकर जो संसार चक्र के आदि मध्यांत का ज्ञान दिया है और धर्मों का जो इतिहास बताया है, वो हमें और सत्य बताता है। और ये विवेक से सोचने की बात है कि मनुष्य जब अपने व्यावहारिक सांसारिक जीवन के संघर्षों से परेशान हो जाता है तो वो आखिर धर्म की शरण में जाता है। अगर धर्म के नाम पर संघर्ष ही है, लड़ाई झगड़े ही है, युद्ध ही है, तो धर्म की शरण में जाने का अर्थ क्या है? क्यों हम धर्म की शरण में जाते? जरूर धर्म के आचरण से जीवन में कभी हमें सुख मिला है, शांति मिली है, विजय हमने प्राप्त किया है, संसार चक्र का कोई समय ऐसा रहा है जब धर्म की शक्ति समस्त विश्व में विजयी रही है, तब तो आज हम धर्म की शरण में जाते हैं। तो वो कौन सा समय है, कब धर्म की पूर्ण विजय थी और आज ये स्थिति कैसे बनी है? तो यहां सृष्टि की तुलना वृक्ष के साथ की गई है। जैसे कल आपने संसार चक्र की तुलना चक्र के साथ देखी, यहाँ सृष्टि की तुलना वृक्ष के साथ की है, विशेष धर्म के संदर्भ में। जैसे वृक्ष में हम बीज बोते हैं, उस बीज से जड़े निकलती है, तना निकलता है, फिर अनेक डाल डालियां निकलती हैं, फिर अनेक पत्ते फूल और फल निकलते हैं, वृक्ष का पूरा विस्तार हो जाता है। और एक समय आता है वो वृक्ष पूरे विस्तार को प्राप्त कर आखिर जर्जरीभूत हो जाता है, टूट पड़ता है और उसके फल के ही बीज से पुनः नया वृक्ष उगता है। इसी प्रकार धर्मों के इतिहास की भी बात है। इस मनुष्य सृष्टि का वृक्ष जो है कल्प वृक्ष, कल्प माना सृष्टि नाटक का एक साइकिल जो 5000 वर्ष का है। कल्प माना 5000 वर्ष का ये मानव जाति का वृक्ष, जिसका बीज है निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव, जो इस सृष्टि वृक्ष के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, सारे ही सनातन सत्यों को स्पष्ट करते हैं, इसलिए उनको बीज रूप कहा जाता है, इस सृष्टि वृक्ष का रचयिता कहा जाता है। रचयिता इस अर्थ में नहीं है कि संसार में जो कुछ हम देखते हैं वो परमात्मा ने पैदा किया है या उसकी रचना की है, वो तो आपने सृष्टि चक्र में समझ लिया है कि यह संसार प्रकृति और पुरुष का बना हुआ एक खेल है। प्रकृति माना 5 तत्व जो अनादि अविनाशी है, और पुरुष माना आत्मा चैतन्य शक्ति, वो भी अनादि अविनाशी। इसलिए न प्रकृति को उत्पन्न करने की बात है, न आत्मा को उत्पन्न करने की बात है। विज्ञान भी कहता है कि भौतिक शक्ति न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, वो रूपांतरित होती रहती है। इसलिए प्रकृति के 5 तत्व जो हैं, वो अनादि और अविनाशी है, और आत्मा जो चैतन्य शक्ति है वो भी अनादि अविनाशी है। गीता में हम पढ़ते हैं कि आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। आत्मा एक अविनाशी अनादि अजर अमर चैतन्य शक्ति, और इस प्रकार आत्मा और प्रकृति का बना हुआ यह संसार खेल भी अनादि और अविनाशी। इसलिए परमात्मा रचयिता उस अर्थ में नहीं है कि उसने सब कुछ उत्पन्न किया है, लेकिन वो रचयिता उस अर्थ में है कि वो इस सृष्टि वृक्ष के आदि मध्य अंत के सारे राज को जानते हैं, वे इस वृक्ष के नॉलेज फुल है। इसलिए परमात्मा आकर इस वृक्ष के आदि मध्य अंत का इतिहास हमें बताते हैं। इस कल्प वृक्ष के बारे में शास्त्रों में एक कहानी है, आपने दोनों शब्द सुने होंगे, कल्प वृक्ष और कामधेनु, कि वो मनोकामनाएं पूरी करते थे। इस कल्प वृक्ष के लिए शास्त्रों में एक कहानी है कि इसके नीचे बैठकर मनुष्य जो संकल्प करता है वो सिद्ध हो जाता है। और उस बात को प्रमाणित करने के लिए वो एक कहानी बताते हैं कि एक व्यक्ति गर्मी के दिनों में जंगल से पास हो रहा था, लंबी यात्रा करके आया था, बहुत थका हुआ था। अचानक वो इस एक वृक्ष के नीचे बैठता है और उससे संकल्प आता है कि बहुत प्यास लगी है, कहीं पीने के लिए पानी मिल जाए तो अच्छा है। तो वो इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, बहुत सुंदर पानी के घड़े आ जाते हैं, वो पानी पीकर प्यास बुझाता है। फिर उसे संकल्प आता है कि भूख भी लगी है, खाने के लिए भोजन मिल जाए तो अच्छा है, तो भोजन के थाल आ जाते हैं, पेट भर के खाता है, सोचता है चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं तो सुंदर पलंग आ जाता है, वो आराम करने के लिए लेटता है। उसके मन में ये विचार आता है कि जंगल में सो रहा हूँ, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए, तो वो हिंसक प्राणी आ जाते हैं, उसको खा जाते हैं। तो जैसा संकल्प उसने किया वो संकल्प सिद्ध हो गए। वास्तव में ये कहानी है, अगर इस प्रकार का कोई वृक्ष हो तब तो इंसान पुरुषार्थ क्यों करेगा, हर कोई उस वृक्ष के नीचे ही जाकर बैठ जाएगा कि भाई संकल्प करो और सिद्ध हो जाए। तो वास्तव में ये कोई स्थूल वृक्ष की बात नहीं, पर ये सृष्टि कल्प वृक्ष की बात है। इस वृक्ष के नीचे बैठना माना, आप चित्र में देख रहे हैं कि ये संगम युग दिखाया हुआ है, अगले चक्र के कलयुग का अंत और इस नए चक्र के सतयुग के आदि का संधि काल, जिसको संगम युग कहा जाता है। जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और सत धर्म की स्थापना का कार्य करते, इसलिए कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का संधि काल वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल पीरियड है वर्ल्ड साइकिल में, जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और सत धर्म की स्थापना का कार्य करते। ये वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन का पीरियड है, जब परमात्मा आकर विश्व के सभी धर्म की आत्माओं को एक ही संदेश और आदेश देते हैं कि देह धर्म को भूल जाओ, आत्म धर्म में स्थित हो जाओ। तो सत धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा विश्व की सभी आत्माओं को स्वधर्म में स्थित होने का ज्ञान देते। और स्वधर्म माना क्या, वो अब आप समझ चुके हैं कि स्व माना मैं और मैं माना आत्मा, और प्रत्येक आत्मा का धर्म है शांति और पवित्रता। फर्स्ट लेसन में ही आपने ये बात समझ ली है कि प्रत्येक आत्मा के असली गुण धर्म कौन से हैं, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो परमात्मा आकर देह सहित देह धर्म को छोड़कर आत्म धर्म में हमें स्थित कराते। इसलिए कल्प वृक्ष के नीचे माना संगम युग का समय वो समय है जब हमें आत्मधर्म में स्थित होने की साधना करनी। वास्तव में धर्म का मुख्य लक्ष्य दो ही है, आत्मशुद्धि और परमात्मा प्राप्ति। धर्म एक साधन है। धर्म के द्वारा हमें प्राप्त क्या करना है? आत्मशुद्धि और परमात्मा प्राप्ति। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो दो मूल लक्ष्य हम भूल गए हैं और धर्म रूपी साधन के झगड़े में चले गए। अभी जो समय चल रहा है, परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि ये विश्व परिवर्तन का समय है और सृष्टि परिवर्तन के पहले हमें स्व परिवर्तन करना है। इसलिए अभी हमें अपने विचारों को आत्मशुद्धि के पुरुषार्थ में और परमात्मा मिलन से प्राप्ति के पुरुषार्थ में लगाना है। क्योंकि राजयोग के लेसन में आपने समझ लिया है कि परमात्मा से जो कुछ प्राप्ति हमें करनी है, चाहे हमें उनके गुण और शक्तियों को स्वयं में धारण करना है या उनके याद और मिलन से सुख और आनंद का अनुभव करना है, तो वो हम मन और बुद्धि से ही कर सकते। क्योंकि परमात्मा न भौतिक है न प्राकृतिक है। न मैं स्वयं भौतिक हूं न प्राकृतिक। मैं भी चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और परमात्मा भी परम चैतन्य शक्ति है। इसलिए आत्मा का परमात्मा से मिलन मन और बुद्धि से ही हो सकता है और कोई साधन से नहीं हो सकता है और कोई क्रिया से नहीं हो सकता है। इसलिए ये समय है संकल्पों को सफल करने का और कर्मों को विधि पूर्वक करने का। तो जितने संकल्प हम स्वचिंतन परमात्मा चिंतन में लगाते हैं, श्रेष्ठ चिंतन शुभ चिंतन में लगाते हैं, उतने हमारे संकल्प सफल हैं, माना सिद्ध होते। और जितने संकल्प या मन बुद्धि और चिंतन तेरी मेरी दुनियावी व्यर्थ बातों में हम लगाते हैं, उतने हमारे संकल्प वेस्ट हो जाते। इसलिए संगम युग है संकल्पों को सफल करने का युग और विधि पूर्वक कर्म करके कर्म को श्रेष्ठ बनाने का युग। इसलिए जो आत्माएं इस परिवर्तन की वेला में परमात्मा के आदेश पर देह धर्मों की हदों को छोड़ेंगे और आत्मा धर्म में स्थित होने की साधना करेंगे, वे ही सतयुग और त्रेता युग में एक सत धर्म की जब राजाई होगी, उस राज भाग्य को प्राप्त कर सके। चित्र में आप देखिए, वृक्ष के तने में सतयुग और त्रेतायुग दिखाए। जैसे वृक्ष का आधार एक मजबूत तना है और एक तने से ही फिर अनेक डाल डालियां निकलती हैं, तो यहाँ सतयुग और त्रेता युग को तने में दिखाया है। क्योंकि सतयुग और त्रेता युग दो युग 2500 वर्ष समग्र विश्व में एक सत धर्म होता है, जिस सत धर्म के प्रभाव में संपूर्ण विश्व में पूर्ण सुख शांति और पवित्रता है। सतयुग और त्रेता में एक धर्म है, एक राज्य है, एक भाषा, एक कुल और एक मत है। वहां कोई फ्रिक्शन नहीं है और कोई डायरेक्शन नहीं है और कोई मतभेद नहीं। टोटल एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन पर पूर्ण शक्ति होती। और ऐसी दुनिया की स्थापना का कार्य संगम युग में होता है। तो अन्य धर्म स्थापक जब आते हैं, वे केवल अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य करते, लेकिन परमात्मा आकर जब सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, तो वे केवल सत्य धर्म नहीं स्थापन करते, लेकिन सतयुगी राजाई और सतयुगी दैवी परिवार की भी स्थापना करते। वे धर्म स्थापक अपने धर्म का ज्ञान देते हैं, अपने नए विचार समाज को देते हैं, लेकिन उन विचारों को जीवन की धारणा में नहीं बांधते हैं। परमात्मा केवल ज्ञान नहीं देते हैं, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में धारण करने की विधि भी सिखाते हैं। इसलिए और धर्म, धर्म स्थापक के जाने से तुरंत पतन को प्राप्त होने लगता है, लेकिन परमात्मा आकर जो सत धर्म स्थापन करते हैं, उसकी प्रारब्ध दो युगों तक चलती है। आधा कल्प 2500 वर्ष तक उस धर्म की प्रारब्ध चलती है। इसलिए अगर एक सत धर्म की दुनिया में हम जाना चाहते हैं, तो अभी हमें स्वधर्म में स्थित होने की आवश्यकता है। जो स्वधर्म में स्थित होंगे, शांति और पवित्रता को जीवन में धारण करेंगे, वे ही एक धर्म वाली दुनिया के लिए लायक बन सकेंगे। अगर हम एक राज्य की दुनिया में जाना चाहते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि अनेकों के हाथ में राज्य सत्ता है, अगर हम एक राज्य में जाना चाहते हैं, तो अभी हमें स्वराज्य अधिकारी बनना होगा, अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनना होगा। इसलिए राजयोग की एक व्याख्या ये भी है, जिस योग से हम कर्मेंद्रिय के राजा बन सकते हैं, वो है राजयोग। तो जो आत्माएं अभी राजयोग की साधना से कर्मेंद्रियों के राजा बनेंगे, मन बुद्धि संस्कारों पर विजय प्राप्त करेंगे, वे ही एक राज्य की दुनिया के अधिकारी बन सकेंगे। इस प्रकार एक मत, वन ओपिनियन, आज हम देखते हैं कि अनेक मते हैं, अनेक संप्रदाय हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है, अपना अपना मार्गदर्शन है। इसलिए कहा जाता है कि तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, हर एक की मत अपनी अपनी है। कोई मनमत पर चल रहा है, कोई मनुष्य मत पर चल रहा है, परमत पर चल रहा है, कोई गुरु मत पर, कोई शास्त्र मत पर, हरेक की अपनी अपनी मते हैं, मान्यताएं हैं, हरेक की अपनी अपनी बिलीफ सिस्टम है। लेकिन जो आत्माएं इस संधि काल में, इस विश्व परिवर्तन की वेला में परमात्मा की आज्ञा पर अपनी मनमत छोड़कर मनुष्य मत, गुरु मत, शास्त्र मत को छोड़कर एक परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलेंगे, एक परमात्मा की सत्य मत पर चलेंगे, वे ही एक मत वाली दुनिया के पात्र बन सकेंगे। इस प्रकार एक कुल, आज सारा विश्व अनेक जाति ज्ञाति और कुल में विभाजित हो गया है। इसलिए जाति का कुल का अभिमान या उसका हल्कापन एक दो को उस नजर से हम देखते हैं, लेकिन जो आत्माएं देह के जाति कुल के अभिमान को छोड़कर जो ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करेंगे, वे इस एक कुल वाली दुनिया में जाने के योग्य बन सकते हैं। इस प्रकार एक भाषा वाली वो दुनिया है। आज अनेक भाषा है, भाषा भेद है, भाषा के नाम पर लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन जो अभी भाषा भेद को भूलकर आत्मा की भाषा को अपनाएंगे, साइलेंस की भाषा को अपनाएंगे, जो प्रेम की भाषा को अपनाएंगे, व्यक्ति किसी भी धर्म जाति भाषा का हो, लेकिन नैनों की भाषा, साइलेंस की भाषा, हृदय के प्रेम की भाषा को हर आत्मा समझ सकती है कि ये व्यक्ति मुझे प्यार कर रहा है या नफरत कर रहा है, वो हम उनके नैन और हाव भाव से ही समझ जाते। इसलिए जो भाषा भेद को छोड़कर आत्मा की भाषा को, प्रेम की भाषा को, साइलेंस की भाषा को जीवन में महत्व देंगे, वे ही एक भाषा वाली दुनिया में जा सके। तो कहने का भावार्थ ये है कि सतयुग और त्रेता युग में जो एक धर्म राज्य भाषा कुल वाली दुनिया है, उसमें जाने के योग्य बनने का पुरुषार्थ अभी संगम युग में करना है, क्योंकि स्थापना का कार्य अभी चल रहा है। जैसे आजादी की मूवमेंट में जिन्होंने साथ दिया, सहयोग दिया, कुर्बानी दी, वे ही आजाद भारत के नेता बने। आज भी उन फ्रीडम फाइटर्स को सम्मानित किया जाता है और सुविधाएं दी जाती। इसी प्रकार परमात्मा भी कलयुग के अंत समय, सदयुग आदि के संधि काल संगम युग में जब सृष्टि पर आते हैं और सतधर्म की स्थापना करते हैं, उस समय जो भाई बहने, जो आत्माएं मन वचन कर्म से और तन मन धन से सहयोग देते हैं, परमात्मा की मत पर चलते हैं, वे ही सतयुग और त्रेता युग की दुनिया के लायक बनते हैं। इसलिए सतयुग और त्रेता युग, जिसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है और हर धर्म में इस बात को स्वीकार किया है, हर धर्म ये बताता है कि सृष्टि का आदि काल स्वर्णिम काल था। कोई उनको सतयुग कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, सुखधाम कहते हैं, कोई हेवन पैराडाइज कहते हैं, कोई जन्नत बहिष्त कहते हैं, कोई गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, गोल्डन एरा कहते हैं। आपने यहाँ आर्ट गैलरी में वो बात देखी होगी कि हर धर्म में और हर धर्म शास्त्र में इस बात का वर्णन है कि सृष्टि का आदि काल स्वर्णिम काल था। तो स्वर्ग में हिंदू जाएंगे या बहिष्ट में मुस्लिम जाएंगे या हेवन में क्रिश्चियन जाएंगे या सचखंड में सिख जाएंगे, ऐसा नहीं। वास्तव में सतयुग और त्रेता काल के समय को ही स्वर्ग वैकुंठ
हेविन
बहिश सचखंड गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। इसलिए इस सतयुग में, इस बहिश्त में, इस हेविन में, इस सचखंड की दुनिया में वो हिंदू जाएगा, वो मुसलमान जाएगा, वो क्रिश्चियन जाएगा, वो सिख जाएगा या कोई भी धर्म की वो आत्मा जाएगी जो अभी इस सृष्टि परिवर्तन की वेला के समय परमात्मा की आज्ञा पर देह धर्म की हदों को भूलकर आत्म धर्म में स्थित होंगे वे ही इस प्रारब्ध को प्राप्त कर सके। इसलिए सतयुग और त्रेता युग को वृक्ष के तने में बताया है, जहां कोई मतभेद नहीं है, मत मतांतर नहीं है, जहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई दुख शांति नहीं। वो सत धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि मीन्स जो सृष्टि के आदिकाल से चला है, सनातन मीन्स जिस जो चलता ही रहता है, जिनके खत्म होने से पूर्व परमात्मा पुनः स्थापन कर देते, जिस धर्म की धारणा से देवी देवता जितनी ऊंची स्थिति को हम प्राप्त कर सकते, इसलिए इसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह धर्म कर्म में समाया हुआ है। सतयुग और त्रेता युग में धर्म का अलग कोई स्वरूप नहीं है। सतयुग और त्रेता में कोई ज्ञान योग भक्ति नहीं है, वहां कोई गुरु शिष्य नहीं, वहां कोई मंदिर शास्त्र भक्ति की क्रियाकांड नहीं, धर्म का अलग कोई स्वरूप नहीं, वहां धर्म कर्म में समाया हुआ है। इसलिए वहां हम धर्म श्रेष्ठ है माना कर्म श्रेष्ठ। सतयुग और त्रेता में राज्य सत्ता भी धर्म की मर्यादा अनुसार चलती, इसलिए सतयुग और त्रेता युग के जो राजा है महाराजाएं हैं जिनको देवी देवता के रूप में हम बताते हैं, उसमें आप देखिए कि उनको डबल ताजधारी बताते, उनके पास मस्तक पर रत्न जड़ी ताज है जो धन वैभव और सत्ता का प्रतीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि हर देवी देवता के मस्तक के पीछे प्रकाश का ताज दिखाया जाता है जो आत्मा की पवित्रता का सूचक है। इसलिए यहाँ की राज्य सत्ता भी धर्म की मर्यादा अनुसार चलती। तो ये है संसार का स्वर्णिम काल दो युग, जहाँ एक सत धर्म के प्रभाव में समस्त संसार पूर्ण सुखकारी और निर्विघ्न होता है। कोई दुख शांति नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई मत मतांतर नहीं। ये हमारी दैवी प्रारब्ध है जो संगम युग में किए हुए पुरुषार्थ का फल है। अब यहां कोई नया पुरुषार्थ हम नहीं करते, लेकिन किए हुए पुरुषार्थ की प्रारब्ध जन्म बाय जन्म भोगते हैं। इसलिए त्रेता के अंत के साथ हमारी ये दैवी प्रारब्ध भी समाप्त हो जाती और द्वापर युग से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मस्मृति गंवा देते हैं, देह भान में आते हैं, अपवित्रता और विकार जीवन में आने लगते हैं, आंतरिक शांति और पवित्रता गंवाते हैं। इसलिए द्वापर युग से यही आदि सनातन देवी देवता धर्म आदि सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध होता है। क्योंकि द्वापर युग में फिर हम खुद को देवता कहला नहीं सकते, क्योंकि दैवी गुण और पवित्रता हमारे कमजोर होने लगते हैं। इसलिए यहाँ हम देवता नहीं कहला सकते हैं, इसलिए आदि सनातन धर्म कहा जाता है, जो आगे चलकर आदि सनातन हिंदू धर्म के रूप में गाया जाता है। वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं है। आप किसी को भी पूछिए हिंदू धर्म की स्थापना किसने की, उनकी स्थापना का इतिहास क्या है, किसी को पता नहीं। शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म को रिज्यूनेट किया। वास्तव में असली धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, लेकिन द्वापर युग से पवित्रता और दिव्य गुण चले जाने के कारण फिर हम देवता नहीं कहला सकते हैं, इसलिए हिंदू कहलाने लगते और देवी देवताओं की पूजा करने लगते। देवताओं को हम अपना पूर्वज मानते, पर खुद में वो दैवी गुण नहीं रहे, इसलिए देवता धर्म कहला नहीं सके, हिंदू धर्म कहने लगे। तो द्वापर युग से फिर इतिहास को हम जानते हैं कि देवता धर्म का पतन होकर हिंदू धर्म कहा जाता है, और हिंदू धर्म में फिर हम देखते हैं कि चार वर्णाश्रम होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आगे के इतिहास हम जानते हैं कि धर्म के नाम पर मंदिर, शास्त्र रचना, यज्ञ, योग, होम, हवन, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, ये सारी भक्ति की जो सामग्री है या भक्ति के जो क्रियाकांड है, वो द्वापर युग से निकलते। और उसके साथ साथ आप देखिए कि द्वापर युग में अन्य मुख्य तीन धर्मों की स्थापना का कार्य होता है। दूर पश्चिम में अब्राहम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। वास्तव में अब्राहम का इतिहास अगर आपने पढ़ा हो तो उनके बाप दादा हिंदू थे, मूर्ति पूजक, लेकिन अब्राहम को मूर्ति में विश्वास नहीं हुआ और नए विचार देने का कार्य शुरू किया। उनके ही दो बच्चों के द्वारा आइजेक और इस्माइल के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई और इजहाक के द्वारा यहूदी धर्म की स्थापना। इसलिए दूर पश्चिम में अब्राहम के द्वारा इस्लाम धर्म की शुरुआत। इधर पूर्व की तरफ आप देखिए कि हिंदू धर्म में जब अंधश्रद्धा क्रियाकांड बढ़ने लगे, धर्म के नाम पर जब बलि देने की प्रथाएं शुरू हुई, हिंसा होने लगी और लोग अज्ञानता के कारण भय के वश हुए, तो बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना है। जिन्होंने आत्मा परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं दिया, लेकिन उस समय जो अंधश्रद्धा, हिंसा और भय का वातावरण है, उसको ठीक करने के लिए उन्होंने मूल्यों का ज्ञान दिया, विशेषकर करुणा, मैत्री और अहिंसा का ज्ञान दिया। और इस प्रकार उस समय समाज और स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया। उधर आप पश्चिम में देखिए कि फिर यीशु ख्रिस्त के द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है, जिसने लव एंड कंसर्न, प्रेम और भाईचारे की बात कही। तो जो एक सत धर्म था समग्र विश्व में, वो द्वापर युग से चार धर्म में विभाजित हो जाता है, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन। इन धर्म स्थापकों ने आकर अपने अपने धर्म की स्थापना की, उस समय के अनुरूप और उस समय के समाज की स्थिति के अनुरूप विचार दिए और वैल्यूज सिखाए। थोड़े समय के लिए थोड़ा समाज परिवर्तन हुआ, लेकिन आगे का इतिहास हम देखते हैं कि जैसे ही वो धर्म स्थापक गए, उन धर्मों का पतन भी शुरू हो गया। इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी मुख्य दो में विभाजित हो गया। बुद्ध के जाने के बाद हीनयान और महायान इन दो पंथों में भी विभाजित हो गए। यीशु ख्रिस्त के जाने के बाद कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में वो विभाजित हो गए, क्योंकि आखिर ये धर्म स्थापक थे, परमात्मा नहीं थे। इसलिए जैसे ही वो धर्म स्थापक गए, उनके धर्मों का विभाजीकरण और उनका पतन शुरू हो गया। हाँ, इन धर्म स्थापकों ने आकर द्वापर युग में पतन के मार्ग पर जा रहे समाज को थोड़े समय के लिए थमाया। अगर ये धर्म स्थापक द्वापर में नहीं आते तो ये विश्व कब से विकारी और पतित बन जाता और पतन को प्राप्त हो जाता। लेकिन इन धर्म स्थापकों ने आकर मूल्यों की शिक्षा दी और समाज को सुधारने का प्रयास किया। लेकिन हर धर्म स्थापक के अपने विचार थे, अपनी मान्यताएं थी। इसलिए द्वापर का इतिहास हम जानते हैं कि धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े युद्ध शुरू हुए, क्योंकि हरेक समझते हैं कि हमारा धर्म सत्य है, हमारा धर्म स्थापक महान, हमारे धर्म शास्त्र ही पवित्र है, हमारे धर्म तीर्थ स्थान ही शुद्ध है। इसलिए धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा तेरा मेरा मैं तू द्वापर से शुरू हुआ और आगे कलयुग का वर्तमान हम देख रहे हैं कि ये धर्म और अनेकानेक संप्रदायों में, मठों में, समाज में विभाजित हो गया और धर्म अधर्म बनने लगे, क्योंकि धर्म के नाम पर पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार होने लगे। धर्म में शक्ति नहीं रही धारण करने। इसलिए आज हम देखते हैं कि समग्र विश्व अनेक धर्म संप्रदाय, मठ, पंथ, समाज, सोसाइटी में विभाजित हो गए। हजारों संप्रदाय है, लाखों मनुष्य गुरु है, हरेक की अपनी अपनी मते हैं, शास्त्र है। इसलिए समाज में दो रिजल्ट हम अभी देख रहे हैं कलयुग के अंत में। एक रिजल्ट है अंधश्रद्धा, उनको कितना भी सत्य समझाओ, कितनी भी विवेकपूर्ण बातें बताओ तो भी वो कहेंगे कि नहीं, हम तो जो मानते आए हैं वो ही मानेंगे। भगवान भी आकर समझावे तो भी हम शास्त्र की ही मानेंगे। तो एक वर्ग है अंधश्रद्धा में, और समाज का दूसरा रूप हम देख रहे हैं अश्रद्धा, नास्तिकता, कि छोड़ो धर्म को, खाओ पियो और मौज करो। वे भोगवाद और भौतिकवाद को मानते। तो जब कलयुग के अंत में अधर्म की अति हो जाती है, समाज मुंझ जाता है कि आखिर सत्य क्या है, माने तो किसको माने। इसलिए कोई नास्तिक है, कोई अंधश्रद्धा में चल रहे हैं। तब वृक्ष के अंत में ऊपर देखिए, पुनः ब्रह्मा को दिखाया है कि कलयुग के अंत समय फिर से परमपिता परमात्मा शिव वही ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और हमें धर्म की सही व्याख्या बताते कि धर्म माना धारण करना। ध्रुव धारयति से धर्म शब्द बना, आचरण में लाना। इसलिए कमल पुष्प दिखाया है कि गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प के समान। जैसे कमल कीचड़ से उगता है फिर भी कीचड़ से अलिप्त रहता है, इस प्रकार कलियुग इस संसार में रहते हुए भी विकारों से अलिप्त पवित्र न्यारा और प्यारा जीवन बनाना प्रैक्टिकल में वो ही धर्म है। विषय विकारों पर विजय प्राप्त करना, दिव्य गुण और आत्म शक्तियों का विकास करना वो ही प्रैक्टिकल धर्म है। इसलिए परमात्मा का सभी आत्माओं के लिए एक ही संदेश है, पवित्र बनो योगी बनो। जो पवित्र बनेंगे वे ही पवित्र श्री कृष्ण की अर्थात देवी देवताओं की दुनिया के लायक बन सके। इसलिए एक तरफ कलयुग के इस अंत समय सत धर्म की स्थापना का कार्य चल रहा है। यहाँ आप देखिए लाखों नर नारी ने अपना जीवन इस सत धर्म की स्थापना के कार्य में समर्पित किया है। परमात्मा ने ज्ञान का कलश बहनों के मस्तक रखा है और संसार में पुनः बैलेंस ला रहे, क्योंकि द्वापर युग से धर्म का कार्य पुरुषों ने किया इसलिए संसार पुरुष प्रधान बन गया, स्त्री गौण हो गई। परमात्मा आकर फिर से माता प्रथम गुरु है। इस सिलसिले को आरंभ करते हैं और नर और नारी दोनों को आध्यात्मिक रूप से समान बनाते हैं और संसार में बैलेंस स्थापन करते हैं। जो भाई बहनों ने अपना जीवन परमात्मा कार्य में समर्पित किया है उनमें से जो अपने पुरुषार्थ से विषय विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त करेंगे उन विजयी आत्माओं की यादगार है विजयंती माला। जो भक्ति मार्ग में हम माला फेरते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि ये माला किसकी यादगार, क्यों हम ये माला के मणके फेरते, वास्तव में ये वैजयंती माला कहा जाता है। यह माला उन विजयी आत्माओं की यादगार है जिन्होंने परमात्मा की आज्ञा पर विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त की। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि माला फेरनी नहीं है लेकिन खुद माला का विजयी मणका बनना है। माया पर जीत प्राप्त करने वाले विजयी रत्न बनना है। तो वर्तमान समय एक तरफ सत धर्म की स्थापना का कार्य चल रहा है और दूसरी ओर सबसे ऊपर आप देखिए अधर्म के विनाश की तैयारियां भी हो गई। उसमें बताया है कि ये महाविनाश का समय है, महापरिवर्तन का समय है। भारत का महाविनाश प्राकृतिक आपदा और ग्रह युद्ध से होगा। भारत का महाविनाश अणु युद्ध से नहीं होगा क्योंकि भारत में पुनः सतयुग आरंभ होना है। इसलिए भारत में अधर्मों का विनाश, पतित आत्माओं का विनाश, इस पाप की दुनिया का महाविनाश प्राकृतिक आपदा और ग्रह युद्ध से होगा। और बीच में आप देखिए कि जो अन्य इस्लामी बौद्धी और क्रिश्चियन है उनका महाविनाश अणु युद्ध से होगा। इसलिए वर्तमान समय के लिए हम कह सकते हैं कि ये वो ही महाभारी महाभारत युद्ध का समय है। हम महाभारत पढ़ते हैं महाभारत सीरियल देखते हैं, लेकिन फिर हम वापस सो जाते हैं। हम जागते नहीं हैं कि फिर से महाभारत युद्ध होने की स्थिति संसार की बन गई। कौरव, पांडव और यादव सेना की बातें जो हम पढ़ते हैं, वो कोई अलग से स्पेशल कोई कौरव, पांडव, यादव नहीं थे। महाभारत और रामायण पढ़ने के बाद महात्मा गांधी जी का ओपिनियन अगर आपने पढ़ा हो, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि महाभारत और रामायण कोई ऐतिहासिक युद्ध नहीं, लेकिन मानव मन के अंदर जो दैवी और आसुरी वृत्ति के संघर्ष चलते हैं, उसको ही युद्ध का रूपक देकर एक रोचक स्वरूप बनाया गया। तो वास्तव में कलियुग के अंत समय, सतयुग की स्थापना के मध्य अभी जो परिवर्तन का समय चल रहा है, ये वो ही महाभारत युद्ध का समय, यही अधर्म के अंत का समय है, यही धर्म के अति ग्लानि का समय है। इसलिए परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं, उस समय जो समाज है, हमारे में से ही कोई कौरव है, कोई पांडव है, कोई यादव है, इस विनाश काले जिनकी परमात्मा से प्रीता है और जो परमात्मा की आज्ञा पर चलते हैं, वास्तव में वो ही सच्चे पांडव। इसलिए आप देखिए पांडव पांच दिखाए, पांच माना बहुत कम थे, बहुत कम आत्माएं हैं जो परमात्मा को पहचान पाती हैं और पहचानने के बाद उसकी आज्ञा पर चलती और मनोविकारों से युद्ध कर मनोविकारों पर विजयी बनती है, वो सच्चे पांडव। और इस विनाश काले परमात्मा से विपरीत बुद्धि जो देह भान में रहते हैं, जैसे कौरवों का दिखाते हैं कि तसु भर जमीन के लिए लड़े, जुआ खेला, भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी, वास्तव में वो चिन्ह हम फिर से अभी देख रहे। आज घर घर में दुर्योधन है, दुशासन है, मां बहनों की पवित्रता की कोई सेफ्टी नहीं, छोटी छोटी बात पर कितने लड़ाई झगड़े हैं घर घर में, गवर्नमेंट भी लॉटरी के नाम पर जुआ ही तो खेल रही है। तो यही भारतवासी अज्ञानी मनुष्य आत्माएं जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, देहभान में है, विकारों के वश है, वो ही कौरव है, जो आपस में लड़ झगड़ करके खत्म होंगे। और यूरोपवासी है यादव, जो इस विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशक शस्त्रों का सर्जन करते और अपनी विपरीत बुद्धि से पैदा किए हुए अणु शस्त्रों से अपने ही कुल का विनाश करे। जो यादवों का शास्त्रों में बताया है कि पेट से मिसाइल निकाले और उससे खुद ही लड़ झगड़ के खत्म हुए। इसलिए अभी ही तीनों सेना उपस्थित है, आपको ये निर्णय करना है कि किस सेना में आपको जुड़ना है, कौरव सेना में जुड़ना है या पांडव सेना में, क्योंकि विजय पांडवों का है, पांडवों का साथी और सारथी स्वयं परमात्मा। इसलिए आज के लेसन का सार यही है कि वर्तमान समय ही अति धर्म ग्लानी और अधर्म के अंत का समय है, यही महाभारी महाभारत युद्ध का समय है, जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आए हैं और सत्य धर्म की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। हमें सच्चा पांडव बनना है, विजय प्राप्त करने वाले सच्चे विजयी रत्न बनना है, और उसके लिए हमें देह धर्मों को छोड़कर आत्म धर्म में स्थित होने की साधना करनी है। अपने मन वचन कर्म को परमात्मा की याद में सफल और श्रेष्ठ करने। तो ये है धर्मों का इतिहास कि असली सत्य धर्म एक ही था। द्वापर युग से अनेक धर्म बने, कलयुग में धर्म अधर्म हो गए। अब ये संगम का समय है, देह धर्म को छोड़ आत्म धर्म में स्थित होने की साधना करते हैं। ओम शांति। द्वापर युग, द्वापर युग में भी 300-400 वर्षों के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है, क्योंकि द्वापर युग से जब हम बॉडी कॉन्शियस बनने लगते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता खत्म होती है, विकारों की उत्पत्ति होती है, तो आंतरिक शांति और सुख चले जाते। इसलिए पुनः परमात्मा की याद आती है तो स्मृति और श्रुति के आधार पर शास्त्रों की रचना होती है। जो कुछ याद आता है, विजन आते हैं, और जो कुछ समाज में सुनते हैं उस श्रुति और स्मृति के आधार पर शास्त्र रचना। कल्पवृक्ष को गीता में उल्टा बताया गया है, और ये श्लोक में लिखा है कि इस उल्टे मनुष्य सृष्टि वृक्ष का बीज मैं परमात्मा परम धाम में रहता। तो परमात्मा परम धाम में रहते हैं जो बीज है, और वृक्ष माना संसार चक्र जो है वो इस मनुष्य लोक में चलता है। इसलिए सामान्य वृक्ष में बीज जमीन में है और विस्तार ऊपर होता है, इसमें बीज परम धाम में है और विस्तार नीचे मनुष्य लोक में, इसलिए उनको उल्टा मनुष्य सृष्टि वृक्ष कहते हैं। हाँ, क्योंकि संगम युग में कलयुग के अंत समय मैक्सिमम आत्माएं वर्ल्ड स्टेज पर है, और परमात्मा आकर सभी आत्माओं को संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, पर जो आत्माएं उस ज्ञान को समझ पाती हैं, समझने के बाद आचरण में लाती हैं और योग्य बनती हैं, वे सतयुग के लायक बनते हैं। पर कलयुग के अंत महाविनाश के बाद नंबरवार सभी आत्माएं वापस परम धाम जाती, जो हमारा असली घर है। वहां हर एक को जाना है, क्योंकि उसको मुक्ति कहते हैं। वहां आत्मा शांति की स्थिति में स्थित होती है, परंतु परम धाम से सतयुग में वो आत्माएं आएगी जो अपने को संगम युग में योग्य बनाएगी, बाकी आत्माएं परम धाम में शांति में बैठी रहे। जैसे कोई नाटक में 50 एक्टर है, पर 50 के 50 एक्टर पहले ही दृश्य में स्टेज पर नहीं आ जाते। नंबरवार हरेक अपने रोल अनुसार स्टेज पर आते हैं, ड्रामा के अंत तक हरेक एक्टर स्टेज पर आ जाता है अपना रोल प्ले करने के। इस प्रकार इस वर्ल्ड ड्रामा में करोड़ों आत्माएं हैं, पर हरेक सतयुग के पहले ही दृश्य में नहीं आ जाती। जो आत्माएं सतयुग के योग्य है वो सतयुग में आती है, बाकी आत्माएं परम धाम में रहती। फिर त्रेता युग आता है, तो त्रेता के योग्य जो आत्माएं हैं वो भी परम धाम से आती। ये सब द्वापर में आते हैं, प्लस द्वापर के योग्य जो आत्माएं हैं वो फिर स्टेज पर आते, और फिर कलयुग की आत्माएं स्टेज पर आते। इसलिए जनसंख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना रोल प्ले करने कलयुग के अंत तक आ जाता है। अब समय है कि फिर से ये नाटक पूरा हो रहा है, वापस हमें घर जाना है। इसलिए जैसे एक्टर रोल पूरा होता है, ड्रेस उतारकर अपने ओरिजिनल स्वरूप में घर वापस जाते हैं, ऐसे ही शरीर रूपी वस्त्र छोड़कर आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेज में आकर वापस घर जाते हैं। यह अविनाशी है और परमधाम जो हम आत्माओं का घर है, जैसे भी 50 एक्टर है कहां से आ रहे हैं, तो वो पर्दे के पीछे से आ रहे हैं। सेम हम आत्माओं का घर परमधाम है, वहां से ही हम सब पार्ट बजाने आते हैं ना। ऐसा है कि भक्ति एक हमारी भावना और श्रद्धा की बात है, उसमें हमें भगवान का सही ज्ञान नहीं। भक्ति में हम भगवान को खोजते हैं, भगवान को पाने का पुरुषार्थ करते, परंतु भगवान कौन है, हम कौन है, वो सही ज्ञान हमारे पास नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति का फल देने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। तो भक्ति से भगवान प्राप्त नहीं होता है, पर भक्ति में जो भावनाएं हैं उसका फल देने के लिए भगवान आते हैं और वे आकर भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान से योगी बनना है। इसलिए भक्ति, ज्ञान और योग तीन चीज दिखाई गई, पर हम ये समझते हैं भक्ति माना पूजा पाठ क्रियाकांड, ज्ञान माना शास्त्रों की विद्वत्ता और योग माना हमने जो अनेक प्रकार के योग सिखा दिए। वो वास्तव में वो सब भक्ति में ही आता है, चाहे शास्त्रों का ज्ञान है या अब तक जो सिखाए गए योग है, वो भक्ति के ही विभिन्न स्वरूप है। लेकिन परमात्मा आकर भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते, जिस ज्ञान से हम राजयोगी बनते। इसलिए गीता में स्पष्ट कहा है कि भक्त आत्मा से ज्ञानी आत्मा और ज्ञानी आत्मा से भी योगी आत्मा मुझे अति प्रिय है। इसलिए हे अर्जुन, योगी भव, तुम्हारा मन मेरे से लगाओ, बुद्धि मेरे में लगाओ, मामेकम याद करो मन मना भव, मामेव बुद्धि निवेश्य, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। ये नहीं कहा है कि चलो जल्दी करो, पूजा करो, आरती करो, भजन गाने लगो, नहीं, मुझे याद करो, मेरे में मन और बुद्धि लगाओ, जिसको योग कहते। क्योंकि सतयुग और त्रेता के लायक नंबरवार इतनी आत्माएं तैयार होती, विश्व की अरबों आत्माओं में से इतनी आत्माएं सतयुग और त्रेता तक पार्ट प्ले करने वाली तैयार होती है। इसलिए उनको 33 करोड़ देवताओं के रूप में गायन होता है। भटकती हुई आत्माएं जिसको कहते हैं, और वो आत्माएं होती हैं शरीर छोड़ते समय, जिनके अंतिम स्टेज कोई क्रॉनिक इच्छा होती है, वासना होती है, वैर या द्वेष होता है। अगर अंतिम स्टेज शरीर छोड़ने के समय कहीं भी आप अति आसक्त है या वासना है, अति आकर्षण है, लोभ है, तो उस इच्छा के वश वो आत्माएं भटकती, और जब तक उस व्यक्ति और वस्तु जहां उनकी अटैचमेंट है वहां उनके हिसाब किताब चुकतू करने के लिए उन व्यक्तियों में वो प्रवेश हो जाती है और उनसे हिसाब चुकाती है। इसलिए उनका उद्धार करने के लिए हम दान पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, योग शक्ति या पवित्रता की शक्ति का उपयोग करते हैं, ताकि उसने तो जिस रीति से शरीर छोड़ा, लेकिन उसका हम उद्धार कर सकें। 3 मिनट। शुभावा की। मैं एक आत्मा हूं, मेरे असली गुणधर्म शांति और पवित्रता है। व्यक्ति हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, हर एक अपने जीवन में शांति और शुद्धि चाहते हैं। क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने असली स्वरूप में शांत और शुद्ध है।